नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने और विशेष आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया है। शिमला में आज कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के विधायकों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से प्रदेश को करीब 50,000 करोड़ रूपये का नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी और कल्याणकारी योजनाओं सहित वेतन और पेंशन पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखा जाए, उस गैप को भरने के लिए आरडीजी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश को कभी भी रेवेन्यू सरप्लस की दृष्टि से नहीं आंका गया था। हिमाचल प्रदेश हिली स्टेट होने के बावजूद हमें उसका नुकसान हुआ है, और ये नुकसान सरकार को नहीं हुआ, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ है। आने वाले 5-10 सालों में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम चाहते हैं कि आरडीजी को अभी जो पार्लियामेंट में ले हुई है, उससे पहले हम सब लोग एक सहमति बनाएं और सहमति बनाकर देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाएं। इस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। अब जैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी से समय मिलेगा, मैं सबको बोलूंगा कि आप चलिए, लेकिन अगर ये सब लोग नड्डा जी के नेतृत्व में भी चलने को तैयार हो तो हम उसमें भी चलने को तैयार हैं। हमें तो आरडीजी लेनी है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 वर्षों में अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व से करीब 401 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ है और हर वर्ष 20 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार एक सशक्त डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऊना के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आज एक समारोह में उन्होंने ड्रोन तकनीक और रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने पर विशेष रूप से बल दिया। अग्निहोत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन तकनीक की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुभव दर्शाते हैं कि भविष्य में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक की भूमिका अत्यंत निर्णायक होगी। अग्निहोत्री ने युवाओं और तकनीकी संस्थानों से इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने का आह्वान किया, ताकि भारत ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बन सके। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद किए जाने के फैसले का राज्य में विरोध जारी है। इस मुद्दे पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल को इस तरह की मदद पहले भी मिलती रही है और आगे भी मिलना जरूरी है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि यह मुद्दा केवल भाजपा या कांग्रेस की राजनीति का नहीं, बल्कि प्रदेश के 75 लाख लोगों के हित का है।
हमारा स्पष्ट बिल्कुल मत साफ है, इसमें कोई भी राजनीति की बात नहीं है, इसमें कोई भाजपा नहीं है, कोई इसमें कांग्रेस नहीं है, ये हिमाचल के लोगों की बात है, हिमाचल के 75 लाख लोगों की बात। और ये इतिहास गवाह है कि जब से हिमाचल बना, तब से आरडीजी हिमाचल को लगातार मिलती आई है। अलग अलग जितने भी फाइनेंस कमीशन आए, उन्होंने हमेशा हिमाचल को योगदान दिया, समर्थन दिया। इसलिए दिया क्योंकि हम एक पहाड़ी राज्य थे, छोटे राज्य थे, और अपने पांव पे खड़ा करने का प्रयास किया।
भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक करार दिया है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों का लोगों को सीधा लाभ मिल सके, इस बात का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट में मुख्य रूप से आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन सहित आम लोगों की उम्मीदों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।
इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया, जो विकसित भारत का लक्ष्य है और आत्मनिर्भर भारत का जो रोड मैप है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बजट में इस बार मुख्य रूप से आर्थिक विकास को गति देना, उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन, आम जन की उम्मीदों को पूरा करना, सामान्य नागरिकों को अधिक अवसर, अधिक सुविधाएं मिले और सबका साथ सबका विकास, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
सिरमौर जिले में रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली रेणुका बांध परियोजना की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने इस प्रक्रिया को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बांध से प्रभावित परिवारों की सूची में अब 150 भूमिहीन और आवासहीन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे इन परिवारों को भी राहत व न्याय मिल सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।